Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिस प्रकार एक गुलाब के फूल में बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती को भूल जाए। वो फिर भी उसी तरह से खुशबू बांटता ही रहता है। उसी प्रकार जिंदगी में कई बार नाकामयाबी हमारे जिंदगी के हाथ आती है, लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत है और अगर आत्मविश्वास है तो हम उस चीज से बाहर निकल कर अपनी मंजिल की ओर जरूर हासिल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर किसी भी परिस्थिति में जीत को हासिल कर पाएं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके चिन्मय जोशी जी, जो कि एक पायलट है और साथ ही साथ एक ड्रीम एक्टिविस्ट भी हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति, थैंक यू
ब्रदर। हमारी जो जर्नी चल रही है, हम धीरे धीरे नाकामयाबी को कामयाबी में बदलते जा रहे हैं। हमने शुरुआत की थी इस तरह से, हमने कहा था कि सबसे पहले हमने जाना कि फेलियर है क्या, फिर हमने जाना कि किस तरह से बाधाएं जो आती हैं, अर्थात जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, वो हमें एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होती हैं जो हमें आगे की ओर बढ़ाती है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमें इस जर्नी पे आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास हमें अपने अंदर से ही क्रिएट करना होगा। और हर बार जब हम ठोकर खाते हैं तो उतने ही तेजी से उठकर फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रदर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है फेलियर से सक्सेस की ओर की, इसके बीच में जो कांटों की बात मैं कर रही थी गुलाब के फूल में, वो होती है बार बार हार खाना। ये थोड़ा तकलीफ देह भी होता है। उस तकलीफ को कैसे सहन करें और कैसे आगे बढ़े?
बहुत समय पहले मुझे एक दोस्त मिला था जो कुछ भी ट्राई करे तो उसमें वो निष्फल जाता था। जैसे उसने जॉब की एप्लीकेशन किया, बहुत सारी एप्लीकेशंस किया, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, और एक भी उसको सफलता नहीं मिली। फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, एक आइडिया राइट, उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, उसमें सफलता नहीं मिली। फिर वो फिर से दूसरा आइडिया स्टार्ट किया, उसमें सफलता नहीं मिली, और ऐसे करते 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 वो बहुत बड़े डेप्थ में चला गया। तो फिर वो ये सोचने लगा कि जो भी वो करेगा वो काम नहीं होने वाला। मे बी उसके स्टार्स में कुछ प्रॉब्लम है, और मे बी उसके जीवन में अभी ये सफलता आनी ही नहीं है, उसकी डेस्टिनी ही यही है। ये ऐसा सोचने लगा। तो जब मैं उससे मिला तो उसने उसकी सारी कहानी मुझे बताई कि मैंने ये ट्राई किया, कुछ काम नहीं कर रहा। ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये मोटिवेशनल थिंकिंग, ये सब कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब मुझे अभी सिर्फ दिखावा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब फेक है और ये सब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये सब ट्राई कर लिया है और अभी मेरे जीवन में सिर्फ नाकामयाबी ही नाकामयाबी लिखी है। एंड दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। तो एक सेकेंड में मैंने उसको कहा कि अभी हमने ये सेशन स्टार्ट नहीं किया, तुम अपनी नाकामयाबी के बारे में मुझे ये बता नहीं सकते अभी। तो वो सहम गया, उसने कहा कि क्या बोल रहे हो? मतलब बोला, हम ये जो सफलता आपको प्राप्त करनी है उसका सेशन हम स्टार्ट करने वाले थे, पर अभी आपकी निष्फलता के बारे में आप मुझे नहीं बता सकते। तो बोले, मैं ये शेयर करने ही तो आया हूँ। तो मैंने बोला, आप एक चीज़ ये बताओ जिसमें आपको सफलता मिली है। तो वो सोचने लगा और फिर उसने बताया कि मैं जब 9th या 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। बोला, अच्छा, तो आप सफल भी हुए हो? बोले हाँ मैं सफल हुआ हूँ। ओके, मैं मान नहीं सकता, दिखाओ अपनी मार्कशीट। तो बोले बिलीव मी मैं सफल हुआ हूँ, मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। ओके दैट्स ग्रेट, तो आपके स्टार्स बदल रहे हैं। बोले देन ही रियलाइज दैट ओके इट्स लाइक मैं अपनी ही स्टोरी, खुद ही की स्टोरी मैं कह रहा हूँ इन अ नेगेटिव वे। मान लिया कि आप असफल हुए हो 10 years, 15 years, 25 years, राइट? सो एब्राहम लिंकन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेसिडेंट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में इतने सारे फेलियर्स पास किए हैं। बाय द टाइम ही वॉज लाइक 51 or 52, उन्होंने कितनी बार बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब्स किया, फिर वाइस प्रेसिडेंसी के लिए या फिर सेनेटर बनने के लिए बहुत सारी कोशिशें की
जी।
हर एक चीज़ में वो नाकामयाब रहे, पर उन्होंने नाकामयाबी को अपना अल्टीमेट रियलिटी नहीं माना, क्योंकि उनका फोकस अपनी नाकामयाबी पे नहीं था। जैसे हमने वो कैमरा के फोकस की बात की कि हम सिर्फ नाकामयाबी पे ही अगर फोकस करते हैं तो वो हमारी अल्टीमेट रियलिटी बन जाती है। पर उनको पता था कि बिगर पिक्चर बहुत बड़ा है, उनको पता था कि ये एक सिर्फ एक पहलू है मेरी लाइफ का, और एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरी जो सारी मेहनत थी वो मेरे को काम आएगी। तो मैंने उसको ये एग्जांपल दिया, और सेकंड थिंग उसको ये रियलाइज़ करवाया स्टेप बाय स्टेप कि आपने जब कभी भी कामयाबी अपने जीवन में महसूस की है उसका एक लिस्ट बनाओ
जी,
और मिनिमम 10 चीज़ें लिखो उसकी, राइट? तो कई कबार हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को कि उसके हिसाब से मैं अभी इतना आगे नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत आगे चला गया हूँ, वो यहाँ पे हैं, राइट? और उस कंपैरिजन की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मेरे माइंड में आ जाते हैं, राइट?
करेक्ट।
कि क्या होगा, या फिर मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, राइट? और आई थिंक ये जब फेज आ जाता है ना मनुष्य के जीवन में कंपैरिजन, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है उनके प्रोग्रेस में और इनके सक्सेस में।
बिल्कुल ब्रदर, आई थिंक अभी तक जितना हम समझ पा रहे हैं, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन में आते हैं तो हमें दो तरह की फीलिंग्स आने की संभावना है, एक है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
सो ट्रू।
आई थिंक ये एकदम, इसी को मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, क्योंकि जब एक बच्चा शायद चलना भी नहीं सीखता तभी ही मम्मी डैडी कंपैरिजन करने लगते हैं, अरे ये इनका बच्चा तो 1 साल में चलने लग गया या 2 साल में चलने लगा, मेरा बेटा क्यों नहीं चल रहा। शुरुआत ही तब से हो जाती है जब से हम अपनी इनोसेंस को भूलते भी नहीं है, उस समय पर ही कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, और वो कंपैरिजन हमारा मरते दम तक रहता है कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, उससे ये नहीं करता, उसके फ्रेंड्स बेटर हैं या मेरा बेटा कम है। ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है कंपैरिजन की, इसे कैसे रोका जाए, और पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, और फर्स्ट स्टेप मैं उनको ये देता हूँ कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने क्या क्या कंपैरिजन फेस किया था, उसका लिस्ट बनाओ। और जब वो ये सोचते हैं और लिखते हैं तभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि ये सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को भी कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, मैं उनको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके बच्चे 5-year-old बच्चा आपका आपकी कहानी लिखे कि मेरी पेरेंट्स मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं रोज़, वो मुझे रोज़ क्या करने को कहते हैं, और आपकी ये कहानी लिखे तो वो क्या लिखेंगे 5 चीज़ें। जब मैं उनको ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो रियलाइज़ करते हैं कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट ये उनके मार्क्स नहीं है, व्हाट मैटर्स द मोस्ट ये उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं है, व्हाट मैटर्स द मोस्ट ये उनका किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितने वो नंबर 1 है या नंबर 2 है ये मैटर नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि उनको मैंने कितना प्यार दिया है
जी।
उनको मैंने कितनी पालना दी है और उनको जो बनना है, जो उनका रीज़न फॉर बीइंग है, उसको ढूंढने के लिए मैंने उनकी कितनी मदद की है।
सो सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, लेकिन मैं इधर ही इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जितना मैं आपकी बात को समझ पाई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को आप फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हो, आप उसको एकेडमिकली स्ट्रांग बना सकते हो, आप उसको सोशली स्ट्रांग बना सकते हो, लेकिन अगर आप उसको इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना रहे हो तो वो बच्चा जिंदगी में आगे जाके फेलियर को जरूर कहीं ना कहीं फेस करेगा।
Sure.
क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज है वो हमारी पूरी जिंदगी को रूल करती है, हमारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में वो आपको असर डालता है। तो आई थिंक इमोशनली स्ट्रांग वो तभी बनेंगे जब आप उसे प्यार देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। आई थिंक एम आई राइट?
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली
जी।
और बहुत ही सुंदर बात की आपने, इमोशनल स्ट्रेंथ, और उसको अदर वर्ड्स में कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस।
ओके,
दैट मींस कि अगर कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसमें भी मैं उसको डील कर सकूं विद स्ट्रेंथ।
करेक्ट।
और बहुत ही ऐसी परिस्थिति आए जहां पे मुझे एकदम सॉफ्ट रहना है तो वो भी मैं कर सकूं।
सो ट्रू,
राइट? और ये बच्चे में तभी आएगा जब वो खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करेगा, जब वो खुद को इनफ मानेगा कि आई एम इनफ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं एकदम अच्छा हूँ। और जब वो उसको फीलिंग आएगी आई एम इनफ, तब वो जो भी परिस्थिति आएगी ना उसको आसानी से वो हैंडल कर पाएगा।
Correct.
क्योंकि उसको पता है कि आई एम इनफ, मुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है किसी चीज को ओवरकम करने के लिए, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं पावरफुल इनफ हूँ उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए।
आई थिंक इसका दूसरा पहलू ये है कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपनी फ्लॉज को देखना ही नहीं है? क्योंकि दो तरह की बातें हैं। आप जैसे कह रहे हैं आई एम इनफ, जिस मोमेंट में ये बोलती हूँ तो उस वक्त मैं कंप्लीट महसूस तो करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए आई एम इनफ इज ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इनफ हूँ, मुझसे ज़्यादा तो कोई बेटर है नहीं इस दुनिया में। तो ये दो तरह के लोग हैं जिनके साथ अभी हम डील कर रहे हैं। एक है जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहे हैं और वो इनफ, आई एम इनफ बोल करके अपने आप को बेटर फील करवा रहे हैं, और एक है जो ओवर कॉन्फिडेंट है और वो आई एम इनफ बोल कर अपने ईगो को बूस्ट दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है?
स्मॉल डिफरेंस, I am enough and I am more than enough.
Wow.
I am enough मतलब मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं डील कर सकता हूँ। I am more than enough मतलब कि मैं खुद तूफान हूँ, मैं तूफान से लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं खुद तूफान हूँ, मैं जहाँ पे जाता हूँ तूफान करता हूँ। That means कि I am something, you know, जैसे आपने कहा superiority complex.
Yeah.
और अक्सर लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसीलिए आता है क्योंकि किसी चीज़ के लिए वो इनसिक्योर हैं अंदर ही अंदर, और वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, राइट? पर अंदर ही अंदर वो खोखलापन है और इसीलिए वो दिखावा करना चाहते हैं। पर जो लोगों को पता है कि आई एम इनफ, वो लोग दिखावा नहीं करते, दे डोंट नीड टू शो, दे नो कि वो जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं और उनको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और आजकल सोसाइटी में मैंने देखा है कि लोग ये शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं कि मुझे अपने मम्मी पापा को प्रूव करना है या फिर अपने दोस्तों को प्रूव करना है। इट्स लाइक वो बैटल को फाइट कर रहे हैं, इट्स लाइक अ फाइटिंग अ बैटल विच इज नॉट हेल्दी, राइट? उनके खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि वो कई कबार ये सोचने लगते हैं कि वो एक तरफ है और पूरी दुनिया दूसरी तरफ है और वो सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट? विच इज नॉट द राइट वे टू लिव द लाइफ, राइट? क्योंकि जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ, तो सबसे पहले तो मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेलापन महसूस करूंगा। सेकंड थिंग, मैं ये महसूस करूंगा कि जब सब लोग मेरे खिलाफ है तो मुझे पूरा जीवन लड़ना ही लड़ना है, राइट? लाइफ इज अ बैटल फील्ड, विच इज नॉट ट्रू। आप लाइफ को बैटल फील्ड की जगह लाइफ को प्ले ग्राउंड की तरह लो। जब आप प्लेग्राउंड की तरह रहोगे तो क्या सोचोगे आप कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स एन एन्जॉयमेंट। हाँ, कभी कभी हार है, कभी कभी जीत है, पर खेल है,
राइट?
एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कि मैं उसको प्रूव करने के लिए, ये सुपीरियर बनने के लिए कुछ करता हूँ, या फिर किसी की भलाई के लिए ये करता हूँ कि आई एम इनफ एंड आई कैन हेल्प एंड आई कैन ओवरकम एनीथिंग दैट कम्स.
आई थिंक आपने जो ये बात कही है अकेलेपन की, मैं एक्चुअली, मुझे इतनी खूबसूरत लगी ये बात कि मैंने देखा है ऐसे लोगों को, लिटरली देखा है कि वो हर वक्त बोलते भी है, उनके वर्ड्स में भी आता है कई बार कि वो बोलते हैं कि हाँ मुझे तो पूरी जिंदगी लड़ना ही है, जिंदगी तो संघर्ष ही है. लेकिन कुछ लोग उस चीज को भी खुशी खुशी भी बोलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि उदास है वो इस चीज को लेकर के, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो चल ही रहा है ना कि मैं लड़ रहा हूँ, आज पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ, तो ये भी उनके लिए हार्मफुल हो सकता है.
Absolutely. और
दूसरा जो आपने बात कही कि अगर हम प्लेग्राउंड की तरह लेंगे, तो प्लेग्राउंड के अंदर में हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी पूरी टीम होती है, जैसे क्रिकेट टीम है, सपोज 11 लोग हैं, तो हमें टीम की तरह आगे बढ़ना है, ना कि अकेले आगे बढ़ना है, क्योंकि जो अकेला व्यक्ति होता है वो हमेशा अकेलापन महसूस करेगा.
Absolutely.
और वो कितना भी बोले कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट, जो भी वो बोले अपने आप को, लेकिन वो अकेला जरूर महसूस करता है अंदर ही अंदर. आई थिंक दिस इज वेरी नाइस. अब मैं जानना चाहती हूँ, हम थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में इस चीज को लेके जाते हैं. जैसे हमने बात की कि सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दो पहलू है जिंदगी के. लेकिन जैसे अभी ऑफिसेज की हम बात करें, ऑफिसेज में मैंने खास करके देखा है कि जो बेटर परफॉर्मर होते हैं वो लोग हमेशा और बेटर और बेटर और बेटर की ओर आगे बढ़ते हैं. लेकिन जो इनफीर, जो जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, सपोज बी ग्रेड मिल रहा है, जिन्हें सी ग्रेड मिल रहा है, उन लोगों के लिए कई बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा आने लगता है उनके अंदर में, क्योंकि उन्हें उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता उनके बॉस से. तो बॉस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सभी लोग अपने आप को बैलेंस्ड महसूस करें और कोई भी अपने आप को इन्फीरियर ना महसूस करे? कैसे पॉसिबल है कि वो पीस क्रिएट किया जाए और एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जाए?
जब मैं बिजनेसेस को कोचिंग देता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं जब मालिक से या डायरेक्टर से मिलता हूँ, तो उनको सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आप मेरे से क्या आउटकम चाहते हो, व्हाट डू यू वांट एज एन आउटकम. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरी कंपनी का कल्चर अच्छा बने और लोग यहाँ पे एफिशिएंट बने, वो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है. तो मैं सबसे पहला सवाल उनको ये कहता हूँ कि आपके हिसाब से आपके जो एक एक वर्कर्स है उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या वो आपको पता है? और मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो नहीं जानते, और क्योंकि वो नहीं जानते उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस है, वो उनको हेल्प नहीं कर पाते, राइट? और जो ये सिनर्जी है वो एम्प्लॉई और डायरेक्टर्स या फिर मालिक और जो एम्प्लॉयज़ की, वो नहीं बन पाती, वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, राइट? और वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट? और वो जो कल्चर वो जो डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कंपनी में भी आके लोगों को खुशी मिले, कंपनी में लोग आने के लिए आतुर हो जाए और एफिशिएंट बनने के लिए वो एक, मतलब एक कल्चर बन जाए, तो वो कल्चर वो डेवलप नहीं कर पाते, राइट? तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर को ये महसूस करवाता हूँ क्वेश्चंस पूछ के कि आप सबसे पहले ये सोचो कि आपके चैलेंजेस क्या है और आपने क्या ओवरकम किया है, राइट? सेकंड थिंग कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके चैलेंजेस क्या है फिलहाल, अभी वर्तमान समय में, और आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो डील करने में, राइट? और जब वो वन ऑन वन मीटअप करते हैं, मैं वहां रहता भी नहीं हूं, पर मैं जब उनको ये फॉर्मूला देता हूं कि आप जब भी उनसे मिलो तो सिर्फ वन ऑन वन मीट करके, ना कि उनके परफॉर्मेंस के बारे में, ना कि उनके रेज के बारे में, ना कि उनके जो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके बारे में आप बात करो, सिर्फ उसके लाइफ की चैलेंजेस में या फिर उसके लाइफ के एक्साइटमेंट्स के बारे में बात करो, और फिर आप उनके जो भी आप मैसेज देना चाहते हो उसको, वो आप सैंडविच अप्रोच से दो. सैंडविच अप्रोच मीन्स आप पहले कुछ अच्छा कहो उनको, कि देखिए आपने इतनी सारी एफर्ट्स की है हमारी कंपनी के लिए और आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और दिल से कहो, राइट, सिर्फ कहने के लिए नहीं पर दिल से कहो
जी।
एंड देन आप उसको सजेशन जो देना चाहते हो कि पर अगर आप इस चीज को इस तरीके से करो तो इसका रिजल्ट और ही अच्छा आएगा। एंड देन अनदर लेयर कि आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और एक चीज जो आप उनको उनके लिए उनके बारे में आपको अच्छी लगती है, जैसे अगर वो हमेशा टाइम पे आते तो उनको कॉम्प्लीमेंट दो कि मुझे ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा टाइम पे आते हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आप अगर ये सैंडविच अप्रोच यूज़ करोगे, उनकी चैलेंजेस के बारे में और उनके एक्साइटमेंट के बारे में जानोगे, उनके जीवन के बारे में जानोगे, तो आप वो जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिक बढ़ा पाओगे।
दिस इज़ लाइक अमेजिंग ब्रदर। आज की जो हमारी जर्नी रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कभी भी ज़िंदगी में सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, जो मुझे लगता है कि भले हम 100 साल के क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में हम एज अ स्टूडेंट अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे की ओर ही बढ़ेंगे और जो फेलियर्स है वो पीछे रह जाएंगे।
सो ट्रू।
थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।
यू आर वेलकम।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़े। भले ही हमारे आसपास कुछ लोगों को ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, शायद हमें उतना एप्रिसिएशन ना भी मिले, लेकिन उसे हमें एक फेलियर की तरह नहीं लेना है। साथ ही साथ हमने जाना कि पेरेंट्स को इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को एक ऐसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनाए जिससे वो जिंदगी की कितनी भी तरह के संघर्ष क्यों ना आ जाए उनके लिए, तो भी उससे आगे बढ़कर वो अपने आप को जीत हासिल कर पाएंगे। उसके लिए शुरुआत पेरेंट्स को करने की ज़रूरत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बनी आसान। ओम शांति।